लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कलीसिया वैयक्तिक और सामुदायिक स्तर पर आध्यात्मिक विवेक के प्रशिक्षण की तात्कालिकता के महत्व को समझे। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। यह ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते हैं तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना की गई है। मेरे लिए उन दुष्टों का सामना कौन करेगा? उन कुकर्मियों के विरुद्ध मेरा पक्ष कौन लेगा? यदि प्रभु ने मेरी सहायता नहीं की होती तो अधोलोक मेरा निवास बन गया होता। प्रभु, जब मुझे लगता था कि मेरे पैर फिसलने वाले हैं तो तेरी सत्य प्रतिज्ञता मुझे संभालती थी। जब असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती थीं तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता था। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 94वें भजन के 16 से लेकर 19 तक के पद। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। इन पदों में भजनकार एक बार फिर पूछता है कि दुर्जन कब तक आनंद मनाएंगे। वह ईश्वर को पुकार कर उनसे अपील करता है कि प्रभु स्वतः को प्रकट करें। वह इस बात से भलीभांति परिचित है कि उसके हर कठिन क्षण में प्रभु ईश्वर उसकी शरण शिला, उसका स्तंभ बने हैं। मनुष्यों के प्रति अपने प्रेम के खातिर प्रभु ईश्वर सदैव धर्मियों की रक्षा करते रहे हैं। प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता उन्हें संभालती है। उनकी दया और कृपा के कारण उन्हें उनकी गहन चिंताओं और निराशाओं में भी प्रभु की सांत्वना का सहारा मिलता रहता है। इसीलिए भजनकार प्रभु में अपने विश्वास की पुनरावृत्ति कर कहता है कि हालांकि बहुत बार ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी आवाज प्रभु ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तथापि प्रभु ही ईश भक्तों की सांत्वना और उनकी आधारशिला बनते हैं। भजन के 20वें पद में भजनकार प्रभु ईश्वर से प्रश्न कर पूछता है, क्या अन्याय की सांठगांठ तेरे साथ हो सकती है, जहां विधि की आड़ में जनता पर भार डाला जाता है? इस स्थल पर हमने श्रोताओं का ध्यान ईश्वर की संहिता की ओर आकर्षित कराया था और यह भी स्मरण दिलाया था कि प्रभु ईश्वर द्वारा दिए गए 10 हुक्मों का पालन युग युगांतर तक के लोगों का दायित्व है, क्योंकि ऐसा कर ही हम अपने मध्य शांति और न्याय की स्थापना में सफल हो सकेंगे। ईश्वर की 10 आज्ञाएं हैं, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, विश्राम दिवस को पवित्र मानो, अपने माता पिता का आदर करो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही कभी मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, अपने पड़ोसी की पत्नी और उसकी किसी चीज का लालच मत करो।
वचन तुम्हारे सदाई सत्यम बनाए। संसार सुंदरम सारा तुम्हारी काया
विश्व सारा तुम्हारी काया
ये विश्व सारा तुम्हारी काया
ये विश्व सारा तुम्हारी काया
तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया
तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया
वचन तुम्हारे सत्यम
आगे स्तोत्र ग्रंथ के 94वें भजन के अंतिम 3 पदों में भी भजनकार इसी तथ्य पर बल देता है कि दुष्ट लोग अधर्म का बदला चुकाएंगे, वे जैसा करेंगे वैसा भरेंगे भी, जबकि धर्मी पुरुष ईश्वर की छत्र छाया में रहकर आनंद मनाएंगे। ये पद इस प्रकार हैं: वे धर्मी के प्राणों के गाहक हैं और निर्दोष को मृत्यु दंड देते हैं, किंतु प्रभु मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर मेरे आश्रय की चट्टान है, वह उनकी दुष्टता द्वारा उनका विनाश करेगा। हमारा प्रभु ईश्वर उनका विनाश करेगा। श्रोताओं, इन पदों के शब्दों को हम नवीन व्यवस्थान में निहित योहन के पहले पत्र को पढ़कर समझ सकते हैं, जिसमें इस तथ्य पर बल दिया गया है कि पाप करना अथवा बुराई में लगना असंभव नहीं है, किंतु पाप करना और ईश्वर की संतान होना इन दोनों बातों में परस्पर विरोध है। इसलिए कि जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा को भंग करता है। इसी संदर्भ में संत योहन के पहले पत्र के 3 अध्याय के 13 पद में लिखा है, भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करे तो इस पर आश्चर्य मत करो। और अब आइए स्तोत्र ग्रंथ के 95वें भजन पर दृष्टिपात करें। इस भजन के प्रथम 3 पद इस प्रकार हैं: आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें, हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु ईश्वर शक्तिशाली है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। गौर करें कि 95वें भजन का कोई विशिष्ट शीर्षक नहीं है। इसमें भजनकार श्रद्धालुओं को उपासना के लिए आमंत्रित करता है। बाइबल व्याख्याकारों के अनुसार स्तोत्र ग्रंथ का 95वां भजन दाऊद के भजनों में से एक है। इस स्थल पर जेरूसलेम और उसके आसपास के मंदिरों और उनके प्रांगण के निर्माण पर तनिक ध्यान देना हितकर होगा। श्रोताओं, प्राचीन काल में श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करने से पहले प्रतीक्षा स्थल पर जमा होते थे और फिर उसके प्रवेश द्वार से प्रवेश करते थे, जिसके तुरंत बाद एक विशाल प्रांगण बना हुआ होता था। इस प्रांगण में यहूदी और गैर यहूदी सभी का स्वागत किया जाता था। फिर दूसरे द्वार से यहूदी महिलाएं प्रवेश करती थीं और तीसरे और अंतिम द्वार से केवल यहूदी पुरुष ही प्रवेश पाते थे। इन तीनों द्वारों और प्रांगणों को पार कर लेने के बाद ही भक्त पवित्रतम पुण्यागार तक पहुंच पाता था। संत पॉल का दावा है कि प्रभु येसु ख्रीस्त ने इन 3 प्रवेश द्वारों और प्रांगणों के बीच बने विभाजनों को भंग कर दिया था। गलातियों को प्रेषित पत्र के 3 अध्याय के 28वें पद में संत पॉल लिखते हैं, अब न तो कोई यहूदी है और न यूनानी, न कोई दास है और न कोई स्वतंत्र, न तो कोई पुरुष है और न स्त्री, आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। श्रोताओं, 95वें भजन में भजनकार लोगों को उपासना के लिए आमंत्रित करता है। यह एक इब्रानी गीत है जिसमें यहूदियों और गैर यहूदियों सभी का आह्वान किया गया है कि वे सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर की स्तुति करें। यह ऐसा भजन है जो मंदिर की घंटियों अथवा गिरजाघर के घंटों की आवाज में गूंजता हुआ लोगों को प्रभु ईश्वर के आदर में गीत गाने के लिए आमंत्रित करता है। आओ शब्द एक आह्वान है, आमंत्रण है, प्रभु की स्तुति हेतु एक विशिष्ट निमंत्रण है। भजनकार स्मरण दिलाता है कि प्रभु ईश्वर शक्तिशाली त्राण करता है जिनका हम स्तुतिगान करें और जिनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया करें।
धन्यवाद प्रभु तुझको तुझको